الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، पिछले चंद दिनों से हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कुरान में एक उसूल बता दिया गया है कि जिन चीजों से तुम कभी कभी कराहत करते हो उसमें तुम्हारे लिए खैर होती है, और जिन चीजों से तुम कई मर्तबा बड़ी मोहब्बत और रग़बत रखते हो उसमें तुम्हारे लिए शर होता है। عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ कि कभी कभी जिन चीजों से तुम कराहत करते हो उसमें तुम्हारे लिए खैर है। وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا और कभी कभी कुछ चीजें जिनसे तुम मोहब्बत करते हो وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ उसमें तुम्हारे लिए शर है। तो इंसान की हालत हमने पिछली मजालिस में बताया उस बच्चे की तरह है जो वालिद से सारा वक्त कह रहा है कि जी मुझे आइसक्रीम ही खानी है सर्दियों की रातों में, क्योंकि उसको ये आइसक्रीम ही पसंद है। वालिद को पता है आइसक्रीम में उसके लिए खैर नहीं है, चाहे उसको जितनी आइसक्रीम पसंद हो। तो इंसान भी इस दुनिया में इसी तरह कि कुछ चीजों से बचता है, कुछ चीजों से उसका दिल तंग होता है कि जी ये मैंने नहीं करनी, मगर उसके लिए खैर होती। और कई मर्तबा इंसान ये गलती कर बैठता है कि ऐसी चीजें जिनसे कराहत होती है उनसे अपने दिल को तंग कर देता है, उन चीजों को छोड़ देता है और फिर उस खैर से महरूम हो जाता है। या कुछ चीजें उसके दिल का मिलान होता है, उसे पसंद होती है, वो उन चीजों को अपना लेता है और फिर पूरी जिंदगी परेशान होता रहता है। तो हमने ऐसी चंद चीजों का तस्करा पिछली चंद मजालिस में किया, उसमें से एक चीज सबसे पहले हमने जिसको बयान किया वो था दुनिया की मोहब्बत। यदि से बाग में आता है कि दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है, और फिर इस मजलिस में हमने ये भी बयान किया कि दुनिया की मोहब्बत का मतलब ये नहीं इंसान काम कारोबार ना करे, नौकरी ना करे। दुनिया की मोहब्बत का मतलब ये है कि इंसान आखिरत से गाफिल हो जाए, आखिरत वाले काम छोड़ दे, इसको दुनिया की मोहब्बत। फिर हमने कल की मजलिस में इस बात को बयान किया, इंसानों के अंदर कई मरतबा शहवत वाले गुनाहों की तरफ रगबत होती है, और खास तौर पे औरतों के मुकाबले में मर्दों के अंदर ये ज्यादा, और बदनिगाही का गुनाह ज्यादा होता है, दिल उस तरफ माइल होता है अगर अल्लाह ने उसमें शर रख दिया। कल की मजलिस में हमने ये भी बयान किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये गलत निगाह का डालना ये शैतान के जहरीले तीरों में से तीर। आज की इस मजलिस में एक और ऐसी चीज बयान करना मकसूद है कि इंसान जो है उस चीज से कराहत तो करता है मगर उसमें खैर है, और वो है दूसरों को माफ कर देना। ये दूसरों को जो माफ कर देना है, जिसने आपके साथ जुल्म किया, ज्यादती की या नुकसान पहुंचाया, शरीयत का उसूल ये है कि इंसान ऐसे लोगों को माफ कर दे। दिल में रंजिशें जो लेके बैठता है वो रंजिशें चाहे सही भी हो, दीन ने उसको पसंद नहीं किया, अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया, बल्कि कुरानी हुक्म तो यह है खुज़िल अफ़्वा, तुम माफ करने को पकड़ लो, यानी माफ करने को अपनी जिंदगी की तरतीब बना ही लो। तो कई मर्तबा तबीयत ये होती है कि हम कहते हैं कि कोई भी मुझसे मेरी तबीयत के खिलाफ बात ही ना करे, कोई शख्स मेरी तबीयत के खिलाफ कोई अमल ही ना करे। मगर कुरान का मिजाज ये है, इंसान की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, माफ करने को अपनाना ये बेहतर है। तो दिल तो यही चाहता है, ये दूसरों को गलती की है तो गलती की सजा दी जाए। कई मरतबा इंसान कहते हैं कि दूसरे को सीधा किया जाए, मगर इंसानों का सीधा होना इतना आसान काम नहीं है कि आपकी एक डांट से दूसरा सीधा हो जाएगा। तो नबी अलैहि सलातो वसलाम ने हुक्म दिया माफ कर। तो दिल तो यही चाहता है कि अगर कोई गलती करे तो हम उड़ा के रख दें उसको, मगर उसमें हमारे लिए खैर नहीं है, खैर दूसरे को माफ करने। नबी अलैहि सलातो वसलाम से एक सहाबी ने आके पूछा, अल्लाह के नबी, मेरा एक नौकर है, एक मेरा सॉरी गुलाम है, उस जमाने में तो गुलाम होते, अल्लाह के नबी, मेरा गुलाम है, कभी कभी चीजें भी उठा लेता है, मैं काम उसको कहता हूँ वो काम भी सही तरह से नहीं करता है, और फिर कई मर्तबा मुझसे झगड़ता भी है,
अरे
तो मैं उसको माफ कर देता हूँ, मगर अल्लाह के नबी, फिर मैं इसको कितना माफ करूं। नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हर रोज इसको 70 मर्तबा माफ कर दिया करो। अल्लाह, तो हमें अल्लाह के नबी की इस मुबारक हदीस से मिजाज का पता चल गया, ये झगड़ों को लेके बैठना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो झगड़ा इंसान को असल कामों से रोक देती है। तो कुछ चीजें हम ये समझते हैं कि हमें ये चीजें करनी चाहिए, मगर उन चीजों में हमारे लिए शर है। चुनाचे मशहूर हदीस से सहाबा इकराम तशरीफ फरमाते हैं, और बड़े बड़े जय्यद सहाबा अल्लाह के प्यारे महबूब की इस मजलिस में तशरीफ फरमाते हैं, और दूर से एक शख्स गुजरा जिसको कोई नहीं जानता था, यानी अननोन से ये सहाबी थे। तो वो जब गुजरे तो अल्लाह के नबी ने सबसे कहा कि देखो वो जो जा रहा है ना, वो जन्नती है। सारे बड़े हैरान सारों ने देखा, अल्लाह के प्यारे महबूब की मुबारक जबान से जिंदगी में ये बशारत मिल गई कि वो जन्नती जा रहा है। एक साहबी को बड़ा शौक हुआ कि जी जाके देखो करते क्या है, कि अल्लाह के नबी ने उनको फरमा दिया कि जन्नती। तो उनके पीछे पीछे चले गए, उनके घर तक पहुंच गए और कहा कि जी आपका मेहमान। उन्होंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह आइए। मेहमान का अरब में बड़ा इकराम होता है, मुसलमानों को मेहमान का इकराम का हुक्म। 2-3 दिन तक तो मेहमानों को उस जमाने में तो वैसे ही लोग आराम से, जिसने कम है मेहमान उसको घर में रख लिया जाता था, वो भी घर में रहेगा इस नियत से कि मैं जरा देख लूंगा कि करते क्या है ये। तो 2-3 दिन तक उनके पास रहे, 3 दिन बाद जो है अमाल देखते रहे, और अमाल जब देखे तो उन्होंने कहा जी अमाल तो करते हैं, मगर वही कर रहे हैं जो हम सब करते हैं, कोई ऐसा एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहे हैं। तो 3 दिन बाद बता दिया, भाई असल मसला तो यही था कि अल्लाह के प्यारे महबूब ने आपके बारे में फरमाया कि आप जन्नती हैं, मैं इसलिए आया कि मैंने कहा देख लूं कि क्या ऐसी चीज करते हैं कि जिसकी वजह से आपके बारे में ये फरमाया कि जन्नती। तो आप तो सारे वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज तो नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, मैं तो बड़ा कमजोर हूँ। मगर उसने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई तो ऐसी चीज होगी, आप खुद ही बताएं, कुछ सोचे मेरे इस मसले को हल करें। मैं चाह रहा हूं कि वो अमल कर लूं। मेरे भाई मेरे ऊपर रहम फरमा। तो उन्होंने बड़ा सोचा, उन्होंने कहा जी एक चीज करता हूं, हर रोज रात को सोता हूं तो अल्लाह से ये कहता हूं हर रोज रात कि या अल्लाह जिसने कोई मेरे साथ बुराई की है मैंने उसको दिल से माफ किया, ए अल्लाह तू भी मुझे माफ कर दे। ऐसा अमल है कि इस अमल पे इतने सहाबा कराम हजारों, मगर इनमें से ये अमल करने वाले को अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जन्नती है। तो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने हमारे दिल दुखाए होते हैं, बहुत सारे लोगों की चीजें हमें पसंद नहीं होती हैं, मगर ये भी सच है कि बहुत सारे लोगों के हमने भी दिल दुखाए हैं। तो जब हम भी ये चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई हमें पकड़ सकता है वो माफ ही कर दे तो बेहतर है, तो हमें भी यही करना चाहिए कि अगर हम किसी को पकड़ सकते हैं तो माफ कर दे। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स दूसरों की गलतियों को इस दुनिया में जल्दी माफ करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन उसकी गलतियों को जल्दी माफ करेगा। ये छोटा अमल नहीं है। हम आमतौर पे कहते हैं भाई नफली अमाल कर लें, दुआ कर लें, कुरान पढ़ लें, ये सारे करने के अमल हैं, ये माफ करना तो बड़ा ठीक है, अच्छी बात है, कर ले कोई कर ले तो। मगर सच्ची बात यह है कि शायद ही कोई अमल इससे बड़ा हो, शायद ही कोई अमल इंसान को उतनी परवाज अल्लाह की तरफ देता हो जितना ये दूसरों को माफ करना है। ये जो मामलात पे मट्टी डालना होता है ना, ये बहुत बड़ा। और कुछ लोग अल्लाह ने ऐसे बनाए तो उनके मिजाज ऐसा होता है कि माफ कर देना चाहिए, इंसान हैरान होता है। और यही वो लोग हैं जो बड़े बड़े अजर लेके जाएंगे, लोग उनको समझते होंगे कि बेचारे बस आम से लोग हैं, आम से मुसलमान हैं, थोड़े आमाल करने वाले, मगर तबीयतों में माफ करना इतना होगा कि वो हर एक से आगे बढ़ जाए। हमारे जानने वाले रिश्तेदार हैं, ये पिछले हफ्ते का वाक्य है और करीबी रिश्तेदारी है, बहुत ही मोहब्बत का ताल्लुक इस आजिज के साथ, दीनी कामों में भी बहुत हेल्प करता है, अल्लाह ताला उनको बड़ा ओहदा दिया है। तो हमारे मदरसे के कुछ काम कभी होते हैं तो वो भी कर देते हैं, दीनी कामों में मुआवनत करना, बहुत सारे अल्लाह ताला ने उनको इज्जत भी दी है और ओहदा भी दिया है, फिर उनकी तबीयत में नेकी भी बहुत, और एक बड़ा पर्सनल रिश्तेदारी भाइयों वाला ताल्लुक, कजन जो हूँ, तो वो कहीं बीमार हो गए और 2 महीने साहिब फराश रहे, यानी 2 महीने बिस्तर पे रहे। इस आजिज का सफर था, तो ताल्लुक ऐसा है था, बिल्कुल भाइयों वाला था, यदि अगर बीमार होगा तो पहले दूसरे दिन मुझे जाहिर पूछना चाहिए, 2 महीने गुजर गए मैं पूछ ही नहीं सका, पता ही नहीं चला मुझे 2 महीने तक, सूरत हाल ऐसी बन गई, सफर आ गया यार। तो 2 महीने बाद ये बिस्तर से उठे और 1-2 दिन बाद खानदान में कोई एक तकरीब थी जिसमें फिर मुझे पता था कि जी मिलना है इनसे, मुझे अभी तक नहीं पता था कि ये बीमार है 2 महीने। और किसी और रिश्तेदार ने मुझे बताया कि इसके बारे में पता चला ना यार 2 महीने से बिस्तर, मैंने कहा अच्छा कोई हुआ, मैंने तो पूछा भी नहीं, पता ही नहीं चला 2 महीने गुजर गए। मैंने कहा आज ने इतना खूब एतराज देना है और इतना वो हमें हेल्प भी करता है, दीनी कामों में भी मदद करता है, इतना सारा कुछ वो करता है, वाकई मैंने बड़ी गलत। मैंने कहा चलो मनाएंगे किसी तरह से उसको, नाराज तो उसने होना ही है कि जी जब तुम्हारे काम होते हैं फिर तो हर रोज फोन आ रहा होता है, और मैं बीमार था तो 2 महीने तक तुम पूछ नहीं सके, बात तो उसकी सही है। मैंने कहा अब ये तो फायरिंग होगी, मैं जाऊंगा आज, और ये फिर उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, डांट डपट भी कर सकते हैं बड़े भाइयों की तरह। पूरी तैयारी के साथ गया था कि नाराजगी होगी, बड़ा मनाऊंगा, पहले जहन को पहले से ही तैयार करके। तो मगर जब गए तो उन्होंने तذکرہ ही नहीं किया कि मैं बीमार था, उसी तरह से बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वही मोहब्बत, वही मुझे याद करवाना पड़ा, यार वो आप बीमार हो गए थे, क्या बना? कहते हाँ यार, वो 2 महीने से उसमें था, और ये बात करके आगे फिर आ गए कि जी झगड़ा करना ही कोई नहीं है, लड़ाई वाला मामला ही नहीं, हर झगड़े पे हर ज्यादती पे पानी ही डालना है, मिट्टी ही डाल, खत्म। तो ये वो मिजाज है जो अल्लाह के नबी हमसे चाहते हैं, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में लोग सादा समझेंगे, और ये अपने इस दिल की माफ करने वाली सिफत की वजह से बाकियों से सबसे जल्दी जन्नत में पहुंचेंगे, क्योंकि इनके गुनाह सबसे जल्दी माफ होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें हम शर समझते हैं, हमें पसंद नहीं है, दिल तंग होता है, मगर उसमें अल्लाह ने खैर रख दी है, तो दिल तंग होता है भी, किसी ने ज्यादती की है तो उसको टिका के जरा सबक सुनाना चाहिए। मगर आज तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि माफ करने वाला जो है वो ज्यादा बेटर ऑफ रहता है। अच्छा, अमेरिका का बड़ा साइकोलॉजिस्ट एवरेट वर्थिंगटन उसका नाम, उसने ये तहकीक की, उसने इसको कहा, ये फॉरगिवनेस मॉडल उसने बनाया, माफ करने का एक मॉडल उसने बनाया, और उसमें उसने कहा कि ये 7,000 से ज्यादा लोगों, मेरे ख्याल में 7,000 कोई बेंच मार्क है तहकीक का शायद, उसने कहा ये 7,000 लोगों से ज्यादा लोगों पे उसने तहकीक की, जो मेंटल इलनेसेस के लिए हेल्प लेते हैं, या मेंटल इलनेसेस के लिए दवाई लेते हैं, या डॉक्टर के पास आते हैं, या जो, तो उन्होंने कहा कि जी हम इनके कॉमन फीचर्स देखना चाह रहे थे, क्योंकि मेंटल इलनेसेस को सही तरह से उनको हल करना जो है ना, ये इसमें बहुत कामयाबी नहीं हुई है, जो मेंटली इल होता है वो फिर मेंटली इल ही रहता है। साइकोलॉजिस्ट की दुनिया में कहा जाता है कि जो एक मरतबा मेंटली इल हो गया, इट्स लाइक अ ब्रोकन लेग, कि आपकी टांग टूट, बस आपको पूरी जिंदगी जो है ना क्रचेस पे, बैसाखी पे होना ही है, दवाइयां दवाइयां लेके आप उसको मैनेज थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मगर उसने कहा कि मेरी तहकीक के मुताबिक अक्सर लोग, 80-90% ऑफ पीपल जो मेंटली इल होते हैं, उनके अंदर दूसरों को माफ करने का जज्बा कम होता है। और उन्होंने कहा कि जिसके अंदर ये सिफत पैदा हो जाती है, उन्होंने कहा कि जी फिर इसको ट्रेनिंग के लिए हमने बहुत सारे मेंटली इल पेशेंट्स को इस फॉरगिवनेस पे लगाया, तो उन्होंने कहा जैसे उन्होंने माफ जिन्होंने ज्यादा करना शुरू किया, उसमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आए, कि और कोई हमारी दवाई इतनी तरह से, इतनी अच्छी तरह से काम ना करी जितना ये माफ करने ने काम किया। तो आखिरत के एतबार से माफ करना तो बहुत ही फायदेमंद है, दुनिया का सुकून भी दूसरों को माफ करने में ही है। पंजाबी में कहते हैं ना, मट्टी पाओ, तो जिसको मट्टी पाना आ गई ना, बस आखिरत में भी कामयाब और दुनिया में भी कामयाब। तो उसके लिए सत्ते खैरा है, ये भी पंजाबी में कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये नेमत नसीब फरमाए कि हम दूसरों को माफ करने वाले बन जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात व सलाम अला सैयद अल्अंबिया व अल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअ व अमल तकब्बला व लिसान ज़ाकिरा व क़ल्बन ख़ाशिअ ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. صلى الله تعالى على حبيبه سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
وعليكم السلام
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.